ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा को आश्विन 8 को करेंगे संबोधित। भोटेकोशी बाढ़ से जमा हुए मलबे को हटाने में 95 अरब रुपए खर्च होंगे, सरकार का है अनुमान। अतिक्रमित सार्वजनिक जमीन सरकार के नाम करने का भूमि व्यवस्था मंत्रालय का निर्णय। और भारत की नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल भारत मंडपम में होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की 81वीं महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क रवाना होगा। प्रधानमंत्री शाह आगामी आश्विन 8 गते महासभा को संबोधित करेंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक भोटेकोशी बाढ़ से हुई भारी जनधन की क्षति का उल्लेख करते हुए नेपाल जलवायु परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर मौजूद देशों की स्थिति को विश्व के सामने रखेगा। नेपाल हानि और क्षति कोष से तत्काल राहत तथा विकसित देशों से जलवायु वित्त और आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराने की मांग करेगा। आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय ने बताया कि प्रधानमंत्री की साइडलाइन बैठकों और नेपाल की ओर से पेश किए जाने वाले प्रस्ताव की तैयारी जारी है। प्रतिनिधिमंडल छोटा होने के कारण मुख्य एजेंडों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। भोटेकोशी बाढ़ से जमा पत्थर, मिट्टी, रेत और इमारतों का मलबा हटाने में 95 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार ये खर्च तत्काल और दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए आवश्यक होगा। तत्काल पुनरुत्थान के लिए बुनियादी ढांचे में 67 अरब 42 करोड़, सामाजिक क्षेत्र में 8 अरब 29 करोड़ और उत्पादन क्षेत्र में 5 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। रसुआ की भोटेकोशी नदी में 10 भाद्र को आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित शिक्षा क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए सरकार को 2 अरब 34 करोड़ 32 लाख 17 हजार 500 रुपए खर्च होने का अनुमान है। राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के संयुक्त तकनीकी टीम की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से 18 विद्यालय प्रभावित हुए हैं। इनमें 11 विद्यालय भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 7 विद्यालयों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी गई है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल और कांति बाल अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित एक टीम नुआकोट भेजने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य टीमें पहले से ही प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन मातृ एवं नवजात शिशु, बच्चों तथा प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषज्ञ सेवाओं की अतिरिक्त जरूरत महसूस की गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ के बाद खोज, बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के नागरिकों सहित लापता विदेशी नागरिकों की तलाश को भी प्राथमिकता दी जा रही है। शाह ने न्यूजीलैंड की ओर से दी गई 20 लाख न्यूजीलैंड डॉलर की मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जलवायु जनित आपदाओं के लिहाज से नेपाल अत्यधिक संवेदनशील है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु क्षति एवं नुकसान के लिए वित्तीय सहायता दिलाने में न्यूजीलैंड की रचनात्मक भूमिका की उम्मीद है। प्रधानमंत्री लक्सन ने नेपाल की कठिन परिस्थिति पर दुख जताते हुए न्यूजीलैंड सरकार और जनता की ओर से संवेदना तथा एकजुटता व्यक्त की। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल कानून आयोग प्रथम संशोधन विधेयक 2083 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। इससे पहले कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोविता गौतम ने कहा कि नेपाल कानून आयोग को विधेयकों का मसौदा तैयार करने वाले निकाय के रूप में विस्तारित किया जाएगा। बैठक ने कर्मचारी संचय कोष 10वां संशोधन विधेयक 2083 के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृत किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने मधेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक और शिक्षकों के पद कम होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात उठाई। उन्होंने तराई मधेश के विद्यालयों में विद्यार्थी संख्या के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था करने की सरकार से मांग की। बैठक के आकस्मिक समय में बोलते हुए सांसदों ने गरिमा चौधरी के बलात्कार के बाद हत्या में संलग्न अपराधियों को कार्रवाई के बजाय उन्मुक्ति दिए जाने, महिलाओं को अब भी सड़क पर बच्चे को जन्म देने की स्थिति में रहने तथा खाना पकाने वाली गैस की कालाबाजारी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने अपराध में संलग्न लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा विभिन्न समसामयिक विषयों पर सांसदों ने सरकार और सदन का ध्यान आकर्षण कराया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ,
अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट अझै जीवन्त।
HD भोइस क्वालिटी सँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
र अझ रमाइलो कुरा,
फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पीड इन्टरनेट,
क्लियर कल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा #444 ह्यास डायल गर्नुहोस्। 4G बोल्टे
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि की जांच एवं संरक्षण संबंधी उच्चस्तरीय आयोग रावल आयोग की 2052 की रिपोर्ट में उल्लिखित संपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को नेपाल सरकार के नाम पर कायम करने का निर्णय किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता एकदेव अधिकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा गठित रिपोर्ट कार्यान्वयन समिति की बैठक ने इस संबंध में प्रतिवेदन पेश किया था। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिन कित्तों के संबंध में ये उल्लेख किया गया है कि सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को व्यक्तियों ने अपने नाम पर दर्ज भूमि में मिला लिया है, उन हिस्सों को एक मुष्ट रूप में काटकर नेपाल सरकार के नाम पर कायम करने का निर्णय किया गया है। इसी तरह प्रतिवेदन में जिन कित्तों का पूरा क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि के रूप में उल्लिखित है, उन्हें भी एक मुष्ट निर्णय के माध्यम से नेपाल सरकार के नाम पर सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि के रूप में कायम करने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में वर्तमान में 13,23,10,81,267 रुपए की राशि मौजूदात है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अनुसार आज शाम 5 बजे तक के विवरण के मुताबिक विभिन्न 9 बैंकों में 9,68,23,55,25 रुपए मौजूदात हैं। इसी तरह कोष के 2 बैंकों में स्थित डॉलर खातों में 2,32,84,077 अमेरिकी डॉलर जमा हैं। राहत कोष से कुछ दिन पहले रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के माध्यम से 1 अरब रुपए निकासा किए गए थे। कुशी अमावस्या पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलंबियों ने पवित्र कुश को घर घर में लाकर मनाया। कुश का प्रयोग वर्षभर देवकार्य तथा पितृकार्य में किया जाता है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। आज के दिन घर घर में रखा गया कुश पूरे वर्ष देवकार्य और पितृकार्य में प्रयोग होता है। इसी अवसर पर आज बेटे बेटियां परम्परा के अनुसार अपने पिता को उनकी पसंद की मिठाई और भोजन खिलाकर आदर सम्मान प्रकट करते हैं तथा पिता का मुख देखते हैं। जिनके पिता नहीं हैं, वे विभिन्न पवित्र स्थलों पर जाकर अपने पिता के नाम पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 देश शामिल हैं। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई देशों के नेता हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उनकी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक होने की संभावना है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के भंडारा जिले में रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर आज एक सड़क दुर्घटना में 36 के 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव के अनुसार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से 22 लोग एक बोलेरो वाहन में सवार होकर पोला उत्सव में भाग लेने नागपुर जा रहे थे। उसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर साकोली लाखनी मार्ग पर मुंडी पार के पास एक ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी गंभीर थी कि 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर चिंता जताते हुए कहा कि घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को नागपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा को आश्विन 8 को करेंगे संबोधित। भोटेकोशी बाढ़ से जमा हुए मलबे को हटाने 95 अरब रुपए खर्च होंगे, सरकार का है अनुमान। अतिक्रमित सार्वजनिक जमीन सरकार के नाम करने का भूमि व्यवस्था मंत्रालय का निर्णय। और भारत की नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल भारत मंडपम में होगा शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।